ये आकाशवाणी मुख्य समाचार। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई। प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा के ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल, दिल्ली के रोहिणी और जयपुर के दौलतपुर गांव स्थित मनोरंजन पार्क कंपनियों की 291 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की। दिल्ली में अग्निशमन विभाग को आग लगने की 220 दुर्घटनाओं के बारे में फोन कॉल की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा। और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया और अन्य आरोपियों की हिरासत बढ़ाई है। आम आदमी पार्टी के नेता नीति से जुड़े कथित धनशोधन मामले में हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा के ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल, दिल्ली के रोहिणी और जयपुर के दौलतपुर गांव स्थित मनोरंजन पार्क कंपनियों की 291 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ये कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि विभाग ने इन मनोरंजन पार्को की मालिकाना कंपनियों और इससे जुड़ी अन्य कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। निदेशालय ने कहा कि इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट लिमिटेड कंपनी ने गुरुग्राम में जगह आवंटित करने का वादा कर 1500 निवेशकों से 400 करोड़ से अधिक की रकम जुटाई। हालांकि कंपनी परियोजना को पूरा करने में विफल रही और समय सीमा पर आवंटन से चूक गई। निदेशालय ने कहा कि कंपनी ने निवेशकों के पैसे की हेराफेरी की है। इस धन को संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के पास भेज दिया है जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया है। दिल्ली में कल अग्निशमन विभाग को आग लगने की 220 दुर्घटनाओं के बारे में फोन कॉल आई। दिवाली त्योहार को छोड़कर ये एक दिन में आग से लगने वाली दुर्घटनाओं का उच्च रिकॉर्ड है। इस दौरान कचरा डंपिंग स्थानों, एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिक मीटर और तार आदि में आग लगने की घटनाओं की खबर मिली। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल आग लगने की घटनाओं में 25% की बढ़ोत्तरी हुई है। हालांकि गर्मी की भविष्यवाणी के मद्देनजर विभाग ने पहले ही बड़े कदम उठाए थे और किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी तैयारी की गई थी।
काफी इक्विपमेंट नए खरीदे गए थे, रॉबर्ट खरीदा गया था, वाटर टावर खरीदी गई थी और भी बहुत सारे इक्विपमेंट बेड़े में जोड़े गए थे जिससे कि हम फायर के टाइम ठीक से और कॉल को अटेंड कर सकें और लोगों की जान माल की रक्षा कर सकें। हमने सभी लोगों की जो छुट्टियां बहुत रिस्ट्रिक्ट की हुई है, सारे अफसरों को ड्यूटी पे लगा दिया गया है क्योंकि कॉल अनप्रेसिडेंट हो रही है, नंबर ऑफ कॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 250 कॉल एक दिन में अटेंड करना ये एक तरह से इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल पर डे है। अभी तक एक दिन में इतनी कॉल कहीं नहीं मिली।
श्री अतुल गर्ग ने लोगों से अपील की है कि अगर सतर्क रहा जाए तो ऐसी घटनाओं में कमी आ सकती है।
अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो फायर की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी, आपके जान माल की सुरक्षा भी होगी। अगर आप अपनी वायरिंग की, अपने लोड की समय पे एक साल में एक बार जांच कराएं, ये देख लें वायरिंग ठीक है, वायरिंग कटी हुई तो नहीं है, वायरिंग गली हुई तो नहीं है, और मल्टी प्लगिंग ना हो, जितने भी इक्विपमेंट है आपके जो हैवी ड्यूटी टाइप के उनको कंटिन्यूस ना चलाएं, उसको थोड़ा रेस्ट दें, स्पेशली एसी। दूसरा, अगर आप किचन में हैं और कोई ऐसी चीज पका रहे हैं, तेल डाल के कर रहे हैं, तो उस टाइम फोन को अवॉइड करें।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि यदि उन्हें किसी आग की दुर्घटना का सामना करना पड़े तो वे तुरंत परिसर को छोड़ दें और अग्निशमन विभाग को कॉल करें, स्वयं आग बुझाने का प्रयास न करें। राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं। आज उत्तरी दिल्ली के सोनिया विहार स्थित वजीराबाद पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में भीषण आग लग गई। दिल्ली दमकल विभाग ने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र के मालखाने में आज दोपहर आग लग गई और 10 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना में कई गाड़ियां जलकर राख हो गई है। आग कैसे लगी इसको लेकर अभी कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है। राजधानी दिल्ली में इस साल अब तक आग में 55 लोगों की मृत्यु हुई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रविवार को पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में अस्पताल में लगी आग से 6 नवजात शिशुओं की जान चली गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हक का पूरा पानी नहीं दे रही है। इसके चलते यमुना का जल स्तर सामान्य से 3.5 फीट से ज्यादा नीचे आ गया है। आज यमुना का सामान्य जल स्तर 674 फीट से घटकर 670.3 फीट पर आ गया। उन्होंने कहा कि इससे कई इलाकों में पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। आतिशी ने कहा कि हरियाणा से यमुना में छोड़े जाने वाला पानी वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मिलता है और यहां ट्रीट करके घरों में पानी भेजा जाता है। जलमंत्री ने कहा कि जब हरियाणा से पानी ही कम मिलेगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से उत्पादित करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने हरियाणा और केंद्र सरकार को दोबारा से पत्र लिखा है। बाद में आतिशी ने मीडिया को बताया कि दिल्ली सरकार पानी की समस्या को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जा रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा और उत्तर प्रदेश को आदेश दे कि वे दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ें। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या के लिए वाटर टैंकर वॉर रूम बनाया जा रहा है और पानी की समस्या के लिए लोग हेल्पलाइन नंबर 1916 पर कॉल कर सकते हैं। इससे वहां वाटर टैंकर पहुंचाया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अब विश्वविद्यालय परिसर में पानी की समस्या पर मिलकर काम करेंगे। ये निर्णय दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय छात्र संघ के प्रतिनिधियों की एक बैठक में लिया गया।
छात्र नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से कुलपति के सामने विश्वविद्यालय परिसर में सुविधाओं को लेकर अपनी मांगे रखी। डूसू द्वारा विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर के कला संकाय, केंद्रीय पुस्तकालय और छात्रवासों में स्वच्छ तथा शीतल पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के संदर्भ में मांग पत्र दिया गया था। कुलपति ने डूसू प्रतिनिधिमंडल के साथ सभी मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की। कुलपति ने तुरंत प्रभाव से निर्णय लेते हुए विश्वविद्यालय में विभिन्न स्थानों पर 25 वाटर कूलर लगाने का निर्देश जारी करते हुए कहा कि भविष्य में और भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रादेशिक समाचार के लिए प्राची प्रिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स का भारत के बारे में अपने दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक करना एक स्वागत योग्य कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह भारत के ठोस विकास प्रदर्शन और आने वाले वर्षों के लिए आशाजनक आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने इस विकास का श्रेय वर्ष 2014 के बाद से किए गए व्यापक आर्थिक सुधारों की श्रृंखला को दिया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान लगाया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंक ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर समान रूप से 7% बढ़ने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत गति से बढ़ी है। इस दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछले वर्ष के 7% से बढ़कर 7.6% हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था का परिदृश्य सुदृढ़ बना हुआ है। व्यापक आर्थिक बुनियादी आधार और कॉरपोरेट क्षेत्र मजबूत हैं, साथ ही बाहरी आर्थिक क्षेत्र में भी उभरने की शक्ति मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज आय में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय बैंक की आय में वार्षिक आधार पर लगभग 17% की बढ़ोतरी हुई। इस वर्ष 22 मई को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को अधिशेष के रूप में 2,11,000 करोड़ रूपये देने की मंजूरी दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। हिंदी पत्रकारिता की यात्रा 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा शुरू किए गए प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन से प्रारंभ हुई। एक रिपोर्ट।
हिंदी पत्रकारिता दिवस सत्य और साहस के साथ जन कल्याण के उद्देश्य से कार्य करने वाले हिंदी पत्रकारों के विशेष योगदान को समर्पित है। आज ही 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था। यह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। समाज और संस्कृति पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। इससे पत्रकारिता के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ी और नागरिकों को सही जानकारी प्रदान करने में हिंदी समाचार पत्रों का महत्व बढ़ा। हिंदी समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरल पहुंच गया और पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मॉनसून 1 जून से 2 दिन पहले ही आ गया है।
दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल तट पर प्रवेश कर चुके हैं। अगले 2-3 दिन में साउथ ईस्ट मानसून का फर्दर प्रोग्रेस होगा और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ केरला, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, सम और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ मैनुअल वेस्ट बंगाल और सिक्किम के ऊपर मानसून प्रवेश करेगा। ये सभी इलाका में जहां मानसून आ रहे हैं वहां अगले 2 दिन में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का सतर्क सूचना हम भी जारी किए हैं।
राजधानी में लोगों को आज भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते कई इलाकों में दोपहर को रास्ते और बाजार सुनसान नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मंगेशपुर में आज अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के सफदरजंग स्टेशन में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं पालम स्टेशन में 46.4 डिग्री सेल्सियस और आयानगर स्टेशन में 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में धूल भरी आंधी की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में जानवरों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्राणी उद्यान के निदेशक संजीत कुमार ने बताया कि जानवरों के लिए वाटर कूलर, वाटर पूल, स्प्रिंकलर जैसी विशेष व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ मौसम को देखते हुए एक विशेष आहार योजना भी लागू की गई है, जिसमें मौसमी फल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छांव के लिए कई जगह कृत्रिम शेड बनाए गए हैं। जानवरों पर दिन में कई बार पानी की बौछार की जा रही है। अगर कोई जानवर बीमार पड़ रहा है तो उनके लिए जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक चिड़ियाघर में किसी भी जानवर को हीट स्ट्रोक का सामना नहीं करना पड़ा है। प्राणी उद्यान की बाड़े की दीवारों के पर्दे, फर्श और छतों पर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन पर क्लासिकल गेम में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ उन्होंने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में बढ़त भी हासिल कर ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की राउज रेवेन्यू अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई। प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा के ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल, दिल्ली के रोहिणी और जयपुर के दौलतपुर गांव स्थित मनोरंजन पार्क कंपनियों की 291 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की। दिल्ली में अग्निशमन विभाग को आग लगने की 220 दुर्घटनाओं के बारे में फोन कॉल आई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।